HD Smartcast. You are listening to an HD Smartcast original.
प्रायश्चित ही एकमात्र ऐसा मार्ग है जो हमें पाप कर्मों के फल से मुक्ति दिला सकता है। आज मैं आपको एक ऐसे महातीर्थ स्थान पर लेकर चल रही हूँ जो अत्यंत प्राचीन काल से शुद्धिकरण और प्रायश्चित के लिए विख्यात है। तमिलनाडु का कन्याकुमारी नगर, जो अपने नाम से ही अपनी महिमा कहता है, कहते हैं कि आज भी देवी यहाँ पर अविवाहित कन्या रूप में तपस्यारत हैं। इसीलिए इस स्थान का नाम कन्याकुमारी है। यहीं पर स्थित है सुचिंद्रम शक्तिपीठ, जिसे शुचि तीर्थम, शुचि देश या नारायणी शक्तिपीठ आदि नामों से भी जाना जाता है। नमस्ते, मैं हूँ निष्ठा सारस्वत और मैं आप सभी का HT Smartcast की ओरिजिनल पेशकश 51 शक्तिपीठ पॉडकास्ट में स्वागत करती हूँ। हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार जहाँ जहाँ माता सती के अंग, आभूषण तथा वस्त्र के हिस्से धरती माँ ने धारण किए, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बने। इस पॉडकास्ट के जरिए मैं आपको ले चलूंगी देवी के 51 शक्तिपीठ की यात्रा पर, जिसमें जानेंगे कि शक्तिपीठ कैसे बने, उनका महत्व क्या है, उसकी कहानी और वहाँ कैसे पहुँचे। यहाँ पर देवी सती के ऊपरी दांत गिरे थे। इनकी शक्ति है नारायणी और भैरव को संघार या संकूर कहते हैं। यहाँ सच्चे दिल से प्रायश्चित और तप करने से जन्मों जन्मों के पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। इस मंदिर को स्तानु मलायन मंदिर भी कहते हैं, जो कि त्रिदेव के नाम पर ही पड़ा है। इसमें स्तानु भगवान शिव को, मल भगवान विष्णु को और आयन भगवान ब्रह्मा को रेखांकित करता है। यहाँ त्रिदेव एक ही स्थान पर स्थित हैं। कभी कभी मुझे ऐसा एहसास होता है कि मानो स्थानों के भी अपने भाग्य होते हैं। ये भी एक ऐसा ही महाभाग्यवान स्थान है जो सतयुग से इतनी सारी घटनाओं का साक्षी और कर्म स्थल बना और आज भी दैविक ऊर्जाओं का स्रोत बना हुआ है, जहाँ देवी माँ अपने विभिन्न रूपों में सदैव विराजमान रही और उनके साथ ही कालांतर में त्रिदेवों ने लीला रची और यहाँ स्थापित हुए। कालांतर में इंद्र जैसा देव भी अपनी इंद्रियों के वशीभूत हुआ और इसी स्थान पर प्रायश्चित करके उन्होंने शुचिता को प्राप्त किया और जनसाधारण के लिए ये उदाहरण प्रस्तुत किया कि जब स्वयं इंद्रियों के राजा भी इंद्रियों के वशीभूत हो सकते हैं, तो हम तो साधारण मनुष्य हैं। दिल से कर्मों की ग्लानी हो तो प्रायश्चित का मार्ग सदैव खुला है और ये भी बताया कि कैसे और कहां प्रायश्चित किया जा सकता है। इस पवित्रतम स्थान से संबंधित कालांतर में बहुत सारी घटनाएं हुई। इनकी कहानियां भी बहुत रोचक और सुंदर हैं, जो मैं आपको आगे सुनाऊंगी। इस स्थान की महिमा कहते हुए महाभारत में उल्लेख आता है, ततस्तीरे समुद्रस्य कन्या तीर्थम उपस्पृश्येत तत्रो स्पर्शय राजेन्द्रम सर्व पापे प्रमुच्यते। समुद्र तट पर स्थित कन्या तीर्थ में जाकर स्नान करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। पद्म पुराण में भी कन्या तीर्थ का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि कन्या तीर्थ का प्राचीन कुमारी देवी का मंदिर उल्लेखनीय है। कन्या तीर्थ सुदूर दक्षिण में समुद्र तट पर स्थित कन्याकुमारी का ही नाम है। एक पौराणिक कथा के अनुसार बाणासुर ने घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न कर अमरत्व का वरदान मांगा। शंकर जी ने कहा, कुमारी कन्या के अतिरिक्त तुम अन्य सभी के लिए अजय होंगे। भगवान शिव से इस प्रकार वर प्राप्त कर बाणासुर घोर उत्पाती बन गया। देवताओं पर भी उसने विजय प्राप्त कर ली। इतना ही नहीं, देवलोक में उसने त्राही त्राही मचा दी। तब भगवान विष्णु के परामर्श से देवताओं ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। देवताओं द्वारा किए गए यज्ञ की अग्नि से माता दुर्गा अपने एक अंश से कन्या रूप में प्रकट हुई। देवी ने पति रूप में शंकर को पाने के लिए दक्षिण समुद्र तट पर कठोर तप किया। तपस्या से प्रसन्न हो भगवान आशुतोष ने उनका पाणी ग्रहण स्वीकार किया। देवताओं को चिंता हुई कि इनका पाणी ग्रहण होने पर तो बाणासुर का वधना हो सकेगा। तब नारद मुनि जी ने विवाह के लिए जा रहे शंकर जी को इस सुचिंद्रम नामक स्थान पर अनेक प्रपंच में उलझाकर इतनी देर तक रोके रखा कि प्रातःकाल हो गई और विवाह मुहूर्त टल गया। भगवान शिव वहीं स्थानु रूप में स्थित हो गए। देवताओं की युक्ति काम कर गई। अपना अभीष्ट अपूर्ण रहने से देवी ने पुनः तपस्या करनी शुरू कर दी। मान्यता है कि अभी तक वो कुमारी रूप में तपस्यारत हैं। अपने दूतों द्वारा तपस्या में लीन देवी के अद्भुत सौंदर्य का वृतांत सुनकर बाणासुर देवी के पास आया और उनसे विवाह करने के लिए हट करने लगा। फिर देवी में और बाणासुर में घोर युद्ध हुआ। अंततः देवी के हाथों बाणासुर का वध हुआ और देवगण आश्वस्त हुए। कहते हैं कि आज भी देवी अपनी कुमारी रूप में यहाँ तपस्यारत हैं और भगवान शिव स्थानु रूप में आज भी यहाँ विराजमान हैं। इसलिए ये स्थान कन्याकुमारी भी कहलाया। एक दूसरी कहानी भी है जिसको सुनकर लगा कि प्रभु अपने भक्तों को संरक्षण देने के लिए कैसी कैसी विचित्र लीलाएं रचते हैं। इस कहानी के अनुसार पहले ये स्थान ज्ञान आरण्य नामक वन हुआ करता था, जो बहुत विशाल था। इसी वन में ऋषि अत्रि और उनकी धर्म पत्नी माता अनुसुईया का आश्रम था। ऋषि अत्रि सप्त ऋषियों में से एक हैं और माता अनुसुईया को पवित्रतम स्त्री कहा गया है। दोनों की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक बार नारद मुनि ने माता पार्वती, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती को ये संदेश देने के लिए कि विश्व में माता अनुसुईया से बड़ी कोई पतिव्रता स्त्री नहीं है, उनके पास गए व उनके सामने माता अनुसुईया की पवित्रता का बखान करने लगे। नारद मुनि के मुख से ये सुनकर तीनों माताओं के मन में आशंका और ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हुई। तीनों अपने अपने पति के पास गईं व माता अनुसुईया के पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने को कहा। भगवान शिव, भगवान विष्णु व ब्रह्मा ने अपनी पत्नियों की बात मान ली। एक दिन जब महर्षि अत्रि हिमालय पर्वत पर तप करने के लिए बाहर गए हुए थे, तब त्रिदेव ब्राह्मण वेश धारण करके उनके आश्रम में आए। उस समय माता अनुसुईया स्नान कर रही थी। तीनों ने माता से भिक्षा मांगी। ये सुनकर वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई। उन्होंने अपने अंतर मन से ये जान लिया कि बाहर ब्राह्मण के रूप में त्रिदेव हैं, जो उनकी परीक्षा लेने आए हैं, किंतु उन्हें पतिव्रत धर्म व ब्राह्मण धर्म दोनों का पालन करना था। यदि वे उसी अवस्था में बाहर आ जाती तो पतिव्रत धर्म का पालन नहीं होता व उन्हें मना करती तो ब्राह्मण धर्म का पालन नहीं होता। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने विवेक से काम लिया। वह अपने तप से तीनों देवों को 6 महीने के शिशु के रूप में परिवर्तित कर दिया। इसके बाद माता अनुसुईया उसी अवस्था में बाहर आईं, वह तीनों को शिशु रूप में देखकर उनका ममत्व जाग उठा। उसके बाद उन्होंने तीनों शिशुओं को अपना दूध पिलाया, उन्हें खाना खिलाया और पालने में सुला दिया। माता का दूध पीने के पश्चात तीनों शिशु गहरी निद्रा में सो गए। कुछ समय बीत जाने के बाद भी जब तीनों देव अपने अपने निवास स्थान वापस नहीं पहुँचे तो तीनों देवियों को चिंता सताने लगी। तीनों देवियाँ नारद मुनि के साथ माता अनुसुईया के आश्रम पहुँची व अपने अपने पति के बारे में पूछा। तब माता अनुसुईया ने पालने में सोए हुए शिशुओं की ओर इशारा किया। ये देखकर तीनों देवियाँ बहुत व्याकुल हो उठी और उन्होंने माता से उन्हें पुनः उसी रूप में लाने की प्रार्थना की। देवियों के अनुरोध के बाद माता ने अपने तप से फिर से तीनों शिशुओं को पुनः वही रूप प्रदान किया। भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा माता अनुसुईया के पतिव्रत धर्म व बुद्धिमता से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तब माता अनुसुईया ने उनसे प्रतीक स्वरूप तीनों के बालक रूप उसी आश्रम में स्थापित करने के लिए कहा। माता का ये वरदान त्रिदेव ने पूरा किया और आज उस स्थान पर एक विशाल मंदिर स्थित है जिसका नाम स्थानु मलायन मंदिर है, जिसमें स्थानु भगवान शिव, मल भगवान विष्णु और आयन भगवान ब्रह्मा को रेखांकित करता है। ये इसी शक्तिपीठ प्रांगण में ही स्थित है। इसका शिवलिंग बहुत ही अद्भुत और अद्वितीय है। आइए वो कहानी सुनाती हूँ जिसके कारण इसे सुची देश कहा गया। अहिल्या स्वयं भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री थी, जिसे ब्रह्मा जी ने सभी गुणों व लोकों की सुंदरता के साथ बनाया था। इनका नाम भगवान ब्रह्मा ने अहिल्या रखा था। क्योंकि वो तीनों लोकों में सबसे सुंदर थी। तब सभी देवताओं ने देवी अहिल्या से विवाह करने के लिए प्रस्ताव रखा, किंतु भगवान ब्रह्मा ने ये शर्त रखी कि जो भी सबसे पहले संपूर्ण ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर वापस आएगा उसके साथ ही देवी अहिल्या का विवाह होगा। ये सुनकर इंद्र व सभी देवता ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के लिए दौड़ पड़े। उसी समय गौतम ऋषि का मिथिला नामक नगरी में आश्रम था। वे अपनी प्रतिदिन की पूजा कर रहे थे। गौ माता की पूजा करते समय उन्होंने उनकी परिक्रमा की और उसी समय गाय माता ने बछड़े को जन्म दिया। जब नारद मुनि ने ये दृश्य देखा तो उन्होंने सारी बात भगवान ब्रह्मा जी को बताई। वेदों के अनुसार इस प्रकार की परिक्रमा संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा के बराबर थी, इसलिए ब्रह्मा जी ने देवी अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि के साथ करवाया। अब गौतम ऋषि व देवी अहिल्या सुखी सुखी रहने लगे। गौतम ऋषि बहुत महान ऋषि थे तथा उनकी शक्ति व ज्ञान चारों ओर प्रख्यात था। साथ ही देवी अहिल्या भी एक पतिव्रता स्त्री थी जो अपने पति से अथाह प्रेम करती थी, किंतु इंद्र के मन में द्वेष भावना उत्पन्न हो रही थी और वो किसी भी तरह से देवी अहिल्या को प्राप्त करना चाहता था। इसीलिए देव इंद्र किसी अवसर की तलाश में थे, क्योंकि सामने से वे गौतम ऋषि के तपोबल के आगे तुच्छ थे। एक दिन गौतम ऋषि को हिमालय पर्वत पर 6 महीने के लिए तपस्या के लिए जाना था। उन्होंने अपनी पत्नी को सारी बात बताई और हिमालय पर तपस्या के लिए निकल पड़े। जब देव इंद्र को ये बात पता चली तो वे छल से गौतम ऋषि का रूप धारण कर उनके आश्रम में चले गए। माता अहिल्या अपने पति को इतनी जल्दी वापस आया देख आश्चर्यचकित रह गईं। उन्होंने सोचा कि शायद उनके पति उनसे दूर नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने हिमालय पर तप करने का अपना मन बदल लिया है। इस तरह इंद्र ने देवी अहिल्या के साथ छल से दुराचार किया। इंद्र देवी अहिल्या के प्रेम में इतने आसक्त हो गए कि उन्हें समय का भान ही नहीं रहा। वह इसी प्रकार 6 महीने का समय बीत गया। फिर एक दिन गौतम ऋषि अपना तप पूरा करके वापस आए। उस समय इंद्र सो रहे थे व माता अहिल्या पूजा कर रही थी। अपने पति को सामने देखकर अहिल्या स्तंभित रह गईं। तब उन्हें अपने साथ हुए भीषण छल का ज्ञान हुआ। गौतम ऋषि इंद्र को अपने भेष में देखकर अत्यंत क्रोधित हो गए और इंद्र भी ऋषि को देखकर इतना डर गए कि वो वहाँ से भाग गए। गौतम ऋषि ने गुस्से में इंद्र को नपुंसक होने का श्राप दे दिया। इसके साथ ही उन्हें अपनी पत्नी पर अत्यधिक क्रोध आया। उन्होंने उनसे कहा कि इतने माह तक तुम्हें कोई पर पुरुष स्पर्श करता रहा किंतु तुम्हें इसका आभास तक न हुआ। तुम जिस तरह से इतने माह से तन व मन से कठोर बनी रही, उसी तरह अब तुम हमेशा के लिए पत्थर की शिला बनकर कठोर बनी रहोगी। ये सुनकर देवी अहिल्या इतनी ज्यादा विचलित हो गईं कि उन्होंने अपने पति से क्षमा याचना की और उनसे कहा कि आप तो एक सिद्ध पुरुष हैं और आपकी पत्नी के साथ इतने माह तक छल होता रहा तब भी आपको आभास नहीं हुआ, तो मैं तो एक साधारण स्त्री हूँ। साथ ही मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ और मैंने इंद्र को आप समझकर ही उनके साथ प्रेम किया था। ये सुनकर गौतम ऋषि का क्रोध शांत हुआ और उन्हें अपने द्वारा दिए गए श्राप का पश्चाताप हुआ। लेकिन वे अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकते थे, किंतु उन्हें अपनी गलती का बोध हो चुका था। अपने द्वारा दिए गए श्राप को समाप्त करने का रहस्य भी उन्होंने अहिल्या को बताया कि जब भगवान विष्णु के रूप में भगवान श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र व अनुज लक्ष्मण के साथ इस वन में आएंगे तब उनके चरण स्पर्श से उन्हें श्राप से मुक्ति मिलेगी। गौतम ऋषि के श्राप से मुक्त होने के लिए देवराज इंद्र तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर में माता अनुसुया और ऋषि अत्रि के इसी आश्रम में आए। यहाँ उन्होंने दिन रात कठोर तपस्या की और अपने द्वारा किए हुए कुकर्मों का प्रायश्चित किया। अंत में उनका तप सफल हुआ और उन्हें श्राप से मुक्ति मिली। इस स्थल पर आज भी एक विशाल मंदिर है जिसे शुचिंद्रम मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसमें शुच का अर्थ शुद्ध होने से है, अर्थात इंद्र का शुद्ध होना। उसी से इस स्थल को अपना नाम मिला और इसे शुचिंद्रम मंदिर कहा गया। इसमें शुच का अर्थ है शुद्ध होना और इंद्र का अर्थ है देवराज इंद्र, अर्थात देवराज इंद्र का शुद्ध होना। फिर भगवान विष्णु ने अयोध्या की भूमि पर भगवान श्री राम के रूप में जन्म लिया। महर्षि विश्वामित्र माता सीता के स्वयंवर में जाने के लिए अपने साथ भगवान श्री राम व उनके भाई लक्ष्मण को साथ लेकर गए। बीच में ये आश्रम भी आया जो अब बिल्कुल उजड़ चुका था। यहाँ पर सब कुछ सुनसान देखकर श्री राम ने विश्वामित्र से इसका रहस्य पूछा। तब विश्वामित्र जी ने उन्हें संपूर्ण कथा सुनाई और माता अहिल्या का उद्धार करने को कहा। उसी समय भगवान श्री राम ने उस पत्थर की शिला पर अपने चरण स्पर्श किए। श्री राम के द्वारा पत्थर की शिला को स्पर्श करते ही माता अहिल्या गौतम ऋषि के श्राप से मुक्त होकर पुनः अपने मनुष्य रूप में वापस आ गईं। इस तरह माता अहिल्या श्राप से मुक्त हुईं व मोक्ष को प्राप्त हुईं। भारत के तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी शहर से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सुचिंद्रम शक्तिपीठ, जिसे स्थानु मलायन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये 7 मंजिला मंदिर है, जिसका सफेद रंग का गोपुरम इस मंदिर का मुख्य आकर्षण है, जो लगभग 134 फीट ऊंचा है। इस मंदिर का निर्माण मुख्य रूप से 9वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। इस बात का प्रमाण उस समय के कुछ शिलालेख हैं। इसके साथ ही इसका पुनः निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ, जब इसे पहले से और अधिक विशाल रूप दिया गया व सुसज्जित किया गया। इस मंदिर की स्थापत्य कला और कुछ मूर्तियां अत्यधिक प्राचीन हैं, जो इसका गौरवशाली इतिहास दर्शाती हैं। 17वीं शताब्दी तक ये मंदिर वहाँ के शासक नम्बूदरी के अधीन आता था। इस मंदिर का प्रवेश द्वार अति विशाल है, जिसका गोपुरम बहुत दूर से दिखाई पड़ता है। ये मंदिर बहुत ही भव्य है और इसका प्रांगण बहुत ही विस्तृत और विशाल है। इसके गोपुरम पर विभिन्न नक्काशियां करके चित्र व मूर्तियां उकेरी गई हैं। इसी के साथ यहाँ पर विभिन्न स्तंभों पर भी अलग अलग आकृतियां उकेरी गई हैं, जिससे मंदिर की भव्यता और भी बढ़ जाती है। मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करते ही 30 छोटे मंदिर हैं। मंदिर के अंदर भगवान शिव, विष्णु, ब्रह्मा, नंदी और हनुमान जी की मूर्तियां स्थापित हैं। साथ ही उपवन, वृक्ष, गलियारे इत्यादि इनकी शोभा को और भी बढ़ा देते हैं। आइए अब एक एक करके इन सभी के बारे में जानते हैं। चलो सबसे पहले माँ के पास गर्भगृह में चलते हैं। कई द्वारों के भीतर जाने पर कुमारी देवी के दर्शन होते हैं। मंदिर के अंदर माँ की काले रंग की भव्य और प्रभावशाली मूर्ति है। उस पर इतना स्वर्ण चढ़ा है कि वो स्वर्णिम ही दिखाई देती हैं। उनके हाथ में एक माला है। देवी अनेक प्रकार के स्वर्ण और हीरे के आभूषणों से विभूषित है। माँ अब भी तपस्यारत हैं। इस बात का अनुभव इस दिव्य गर्भगृह में उपस्थित ऊर्जा से लगाया जा सकता है। वो ऊर्जा अंतर मन ही महसूस करता है। रात्रि में माँ का दिव्य श्रृंगार किया जाता है। यहाँ पर दर्शनों के लिए ड्रेस कोड भी निर्धारित किया गया है। पुरुष सिर्फ धोती पहनकर और स्त्रियाँ साड़ी पहनकर ही दर्शन करती हैं। गर्भगृह के उत्तर में भद्रकाली का मंदिर है, जो कुमारी देवी की सखी मानी जाती हैं। मुख्य विग्रह के बाद उनके दर्शन किए जाते हैं। गर्भगृह में ही त्रिलिंगम के दर्शन भी होते हैं। ये लिंगम केवल शिव को ही नहीं अपितु विष्णु और ब्रह्मा जी को भी समर्पित है, इसलिए इसे त्रिलिंगम कहा जाता है। इस मंदिर की मुख्य मूर्ति है जो त्रिदेव को समर्पित है। तीनों भगवानों को एक साथ प्रदर्शित करने के कारण ये पूरे भारत वर्ष में प्रसिद्ध है। आइए अब प्रांगण के मुख्य स्थानों के दर्शन करते हैं। मंदिर के दक्षिण भाग में एक बड़ा जलकुंड है। समुद्र के पास होने पर भी इसका जल मीठा है। कन्याकुमारी के त्रिसागर संगम में स्नान करने के बाद भक्त इसी सरोवर में स्नान करके माँ के दर्शन करते हैं। मंदिर की सभी गतिविधियों के लिए इसका ही जल प्रयोग किया जाता है। मंदिर की दाईं ओर भगवान राम और माता सीता का मंदिर है और बाईं ओर गणेश जी का मंदिर है। इस मंदिर की विशिष्टता का जितना वर्णन करें उतना ही कम है। इस मंदिर में 1035 स्तंभ हैं। यहाँ 4 मुख्य स्तंभ हैं, जो एक ही चट्टान के पत्थरों से बने हैं। इन चारों में से विभिन्न वाद्य यंत्रों, सितार, मृदंग, जल तरंग व तंबूरे के संगीत की ध्वनि आती है। प्राचीन समय में इन्हीं से मंदिर में पूजा अर्चना व आरती की जाती थी। इन चारों वाद्य यंत्रों की सबसे अनोखी बात ये है कि ये चारों एक ही चट्टान से बने होने के बाद भी अलग अलग धुन निकालते हैं। यहाँ पर महादेव के महा सदा शिवम रूप के भी दर्शन होते हैं। भगवान शिव की एक अति प्राचीन मूर्ति यहाँ स्थित है, जिनके 25 मुख, 75 आँखें व 50 हाथ हैं। भगवान शिव के ऐसे रूप को महा सदा शिवम का नाम दिया गया है। ये मूर्ति अद्भुत स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस मंदिर का एक और मुख्य आकर्षण हनुमान बाबा की भव्य अति विशाल मूर्ति है, जो लगभग 22 फीट ऊंची है। इसे एक ही ग्रेनाइट पत्थर को काट कर बनाया गया है। ये एक तरह से भारत की सबसे बड़ी मूर्तियों में से एक है, व साथ ही इस मंदिर की भी मुख्य पहचान है। एक मान्यता के अनुसार भगवान हनुमान ने माता सीता को अशोक वाटिका में इसी रूप में दर्शन दिए थे, जिसका रेखांकन इस मंदिर में मूर्ति रूप में किया गया है। भगवान शिव के वाहन नंदी बाबा की भी यहाँ एक विशाल मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई 13 फीट व लंबाई 21 फीट है। ये भी नंदी भगवान की भारत वर्ष में विशालतम मूर्तियों में से एक है। यहाँ पर एक नृत्य कक्ष भी है, और ये नृत्य कक्ष बहुत ही अद्भुत है। मुख्य 4 स्तंभों के अलावा यहाँ 1035 ऐसे स्तंभ हैं, जिनसे विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं। इस कक्ष को नृत्य मंडप या नृत्य कक्ष के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में 2000 वर्ष पुराना एक वृक्ष भी है, जिसका तना अंदर से खोखला है। स्थानीय भाषा में इसे कोनी याडी वृक्ष के नाम से जाना जाता है। इसी वृक्ष के तने में त्रिमूर्ति स्थापित है। जैसे जैसे मैं इन शक्ति पीठों का वर्णन करती जा रही हूँ, वैसे वैसे मुझे अपनी सनातन संस्कृति पर गर्व बढ़ता जा रहा है। हर बार मुझे कुछ नया पता चलता है, और हमारे पूर्वजों के प्रति मन सम्मान से भर जाता है, जिन्होंने इन पवित्र स्थानों को इतनी गुलामी जैसी विपरीत परिस्थितियों में भी इस धरोहर को सहेज कर रखा। निश्चित ही ये प्रभु कृपा के बिना संभव नहीं है। यहाँ दोनों नवरात्रों के अलावा चैत्र पूर्णिमा, आषाढ़ अमावस्या, अश्विन अमावस्या, शिवरात्रि आदि पर्वों पर विशेष उत्सव आयोजित किए जाते हैं, जो अपनी भव्यता के लिए विख्यात हैं। जिनमें प्रमुख है कार उत्सव, जो कि जनवरी के महीने में मनाया जाता है। मंदिर में मुख्य रूप से रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, जो 10 दिनों तक चलता है। इनमें सभी भगवानों को रथों पर लेकर एक विशाल यात्रा निकाली जाती है। मंदिर भक्तों के लिए सुबह 4:30 बजे खुल जाता है और दोपहर 1 बजे बंद हो जाता है। इसके बाद शाम को 4 बजे वापस खुलता है और रात्रि 8 बजे पूजा के बाद बंद हो जाता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन कन्याकुमारी का रेलवे स्टेशन है, जहां से मंदिर लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि आप हवाई मार्ग से आ रहे हैं, तो यहां से सबसे नजदीकी हवाई अड्डा त्रिवेंद्रम हवाई अड्डा है, जहां से मंदिर लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहां से आगे आप ट्रेन, बस या निजी वाहन से यात्रा कर सकते हैं। कन्याकुमारी अपने आप में एक तीर्थ स्थान है, जहां अनेकों भव्य मंदिर और तीर्थ स्थल हैं। इसी मंदिर के थोड़ी दूरी पर पाप विनाशिनी पुष्करणी है, जहां समुद्र तट पर एक बावड़ी है, जिसका जल मीठा है। यात्री इस बावड़ी के जल में स्नान करते हैं। इसे मंडूक तीर्थ भी कहा जाता है। देवी के दर्शनों के पश्चात आप नाथ द्वारा में विवेकानंद शिला पर स्थित विवेकानंद जी की प्रतिमा के दर्शन हेतु भी जा सकते हैं। ये शिला समुद्र में मंदिर से थोड़ी दूर पर ही स्थित है। कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी इस शिला पर बैठकर चिंतन मनन किया करते थे। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम चलेंगे पंच सागर शक्ति पीठ, जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर माता के निचले दांत गिरे थे। देवी के दर्शनों के पश्चात आप नाथ द्वारा में विवेकानंद शिला पर स्थित विवेकानंद जी की प्रतिमा के दर्शन हेतु भी जा सकते हैं। ये शिला समुद्र में मंदिर से थोड़ी दूर पर ही स्थित है। कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी इस शिला पर बैठकर चिंतन मनन किया करते थे। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम चलेंगे पंच सागर शक्ति पीठ, जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है, जहाँ माता के निचले दांत गिरे थे। आगे की कहानी सुनने के लिए हमसे जुड़े रहिए। मैं हूँ निष्ठा सारस्वत, और आप सुन रहे हैं 51 शक्तिपीठ। अगर आप कोई जानकारी या फीडबैक शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर, निष्ठा सारस्वत ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। साथ ही आप HT Smartcast को भी फॉलो कर सकते हैं उनके सभी सोशल हैंडल्स पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब। और ऐसे पॉडकास्ट सुनने के लिए लॉग इन करें htsmartcast.com पर।
इस पॉडकास्ट सीरीज को केवल मनोरंजन और जानकारी के लिए बनाया गया है। इसमें साझा किए गए 51 शक्तिपीठों की जानकारी का आधार आपसी कही सुनी और पौराणिक किताबें हैं। इससे हमारा उद्देश्य किसी भी मनुष्य, जाति या समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, इसलिए इससे जुड़े किसी भी विवाद के हम उत्तरदायी नहीं है। इसकी नरेशन, रिसर्च एंड राइटिंग निष्ठा सारस्वत ने की है। डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन दीक्षा चौरसिया, एडिटिंग एंड साउंड डिजाइन अमरिंदर सिंह ने की है।
दिस वॉज एन HT Smartcast ओरिजिनल।
HT Smartcast।